इनसे प्रकृति को शुद्ध किया जाए, इसलिए व्यर्थ बात हो गए। फिर बहुत बात कही है, तो महिमा बहुत है, सब सब आचार्य, सब विद्वान, सब ब्रह्म है, सब कहते हैं। लेकिन रूप गोस्वामी पाद ने एक अलौकिक बात कही है कि सब कहते हैं कृष्ण नाम अमृत है, हमारे मन की विद्वान साहित्य बढ़ाते हैं, सब रसगंगाकरण है, स्मरण एक बड़ा सुंदर श्लोक है, यदि रचिता कृपा समृता शीतम त्वरया तेन सुहस्यधायी प्रतिभागं भाकर सन्दिता तत्त्वं भूय मदीय जीवभवता भूयो भवे धन्यता कृष्णेत्यक्षरयोनियं मधुरपुरस्कार प्रतिलक्षिता। कहते हैं और श्लोकी जो मजबूत भवि का श्लोक एक और उत्कृष्टता की ओर जो इंगित कर रहा है, जो अभी निवेदन कर रहा अनेक जन हमारे अनेक जन लोग होते हैं, अनेक योगियां होती हैं और किसी न किसी योगी में किसी न किसी देवता की योगी में सिद्ध गंधर्व विद्याधर चारण पुरुषमान नर नार किसी भी सनातन वितन सनातन पाताल जन्म पद लोग पह लोग सत्यादि लोगों में जीव रूप से जन्म जन्म प्रकार बंधन में रह करके हमने किसी न किसी प्रकार के रथ का अवश्य देव आस्वरण किया होगा। और जब स्वर्ग में रथ होगा देखते हुए अन्य में रहे होंगे तो हमने पर्वती ब्रह्मा में काफिल समान तो होगी अपनियों के रथ का भी परिसेवन किया होगा, कामवेणों का भी झोंका तो रखे के मकरंद का भी सेवन किया होगा। लेकिन मैं सत्य कहता हूँ, हाथ उठाकर कहता हूँ, गर्वस्तंभ के सहारे खड़े हुए श्रीमद महाप्रभु की ओर बद्धांजलि होकर के श्री पंडित रघुनाथ कह रहे हैं तो कृष्ण नाम से मधु कोई वस्तु का सेवन बड़ा किसी जीवन में संभव नहीं हुआ। बुद्धिमानी के अप्राप्य दुर्लभ जब कृष्ण नाम माधुरी का समास्वादन अंतर संस्कृति का विमोचन करके श्लोक प्रसाद सुलभ होता है तो अनेक कोटि जन्मों में अनेक दिव्य रसों के समास्वादन का जो स्मृति में थोड़ा पाप है उसके लिए अनुभव होता है। कृष्ण नाम के एक कण में जितना अमृत है, जितना स्वाद है, माधुर्य है, उतना करोड़ों करोड़ों सिंधुओं को भी संपूर्ण विश्व के संपूर्ण माधुर्य रस को संचित कर लिया जाए तो उसके एक कण की तुलना में वो नहीं आ सकता। श्रीमद भागवत के वेदोदीप में स्पंदनम गतिमताम कुलकस तरुणाम निर्योग पाठ कृत लक्षण योग विचित्रम और श्री रूपुर स्वामी पाद धारा में कहते हैं कई श्लोकों में कि सारे विश्व में आप देखो कहीं भी इस अमृत की कोई उपमा और तुलना नहीं है। महाराज तुम गुरु और भगवान शिव अपनी समाधि में और ब्रह्मा जी भी देखा जब वंशी नाम को श्रवण करते हैं तो उस वंशी के नाम के एक कण की प्रस्ताव तरंग माला में गंगा के सिर पर धर्म करने वाले शिव भी निमग्न और निमंत्रित हो जाते हैं। तो उसकी गंधर्व भी परंतु दुर्दशा में बाद में कहा कि नहीं ये कृष्ण नाम माधुरी माधुरी के परिपूर्ण परिप्लावित नहीं है, ये तो विषम का आधार है, घोर दर्द, इसमें तो इतना विष है, इतना भयंकर विष है, शेष के फणों में और शिव के कंठ के सर्पों में और वासुकी आदि के सर्प नाग राजाओं के संपूर्ण विष समुद्रों को संचित किया जाए तो भी कृष्ण नाम के भीतर रहने वाले विष की तुलना नहीं हो सकती। और सुंदर पीड़ा फिर नलकाल सूर्य कटता गर्भ के निर्वाह सिंधु स्वया तीन होगा सुधा मधुरिमा अंधकार संकोचिन देवा सुंदरी नंद नंदन करु जान यज्ञांतर जायन से सुनवती भक्त मधुरा से विश्राम लाया महाराज। इस नाम को एक डर ही किसी संत के मुख से किसी गुरुजन के मुख से अगर श्रवण कर लिया है प्रवेश हो गया है तो इतना तीव्रता है कि बड़े बड़े यज्ञ करके योग करके समाधि लगा करके तब अनुष्ठान के साधन प्रवृत्ति अपूर्वत्व संभावी कोटि अपूर्वत्व संभावी सत्कृत्य समवाय संपन्न करने के बाद भी जिन नकारात्मक वृत्तियों से विमुक्त होने का सुयोग नहीं मिल सकता एक बार कृष्ण नाम कहने से ही उसके विष के प्रभाव से संपूर्ण प्रकार के काम क्रोध लोभ मोह मदमात्सर्य के जितने विष हैं वो विष मर जाते हैं। कृष्ण प्रेम आ रहा है कृष्ण प्रेम से एक बार आह भर करके कराह करके इस नाम का उच्चारण हो जाए तो जितना भी हमारे जीवन में जन्म जन्म का संचित हलाहल है गरण है वो सब मुक्त हो जाए तंदुरुस्त हो जाए और उसके स्थान के ऊपर जितना भी अति निखिल माधुर्य है वो संपूर्ण माधुर्य हमारी हृदय संपुटि में तरंगायित हो जाए। कृष्ण प्रेम और कृष्ण नाम इन दोनों की महिमा को लेकर के महिमा को लेकर के जो उसकी मधुरू गोस्वामी पाद में विदग्ध माधव में ललित माधव में धर्ती स्थान में सिंधु में उज्ज्वल नीलमणि में और पद्यावली में जैसा विराट वर्णन किया है जिनका नाम है जिनकी महिमा है वे भी चमत्कृत हो गए चकित हो गए। महाप्रभु बार बार गोस्वामी का एक एक श्लोक पर आश्लेष करते थे आलिंगन करते थे उनके उपलाद का चुंबन करते थे और हरभो मच्चाचार्य हरिदास और श्रीवासादि भक्त वृंद के सामने उनके कवित्व का जय जयकार करते थे स्तुति करते थे और जिसको सुन करके भक्त लोगों के प्राण आप्लायित होते थे धन्य होते थे। वैसे तो परमार्थ में एक बात का सिद्धांत है कि अनंग अलंकार में होता है उसके समान वही है परंतु विनम्रता से क्षमा याचना करते हुए मैं तो इतना बड़ा विद्वान नहीं हूँ इसलिए मेरे चतुर्वेदी जी बैठे हैं लेकिन जहाँ तक थोड़ा सा साहित्य दर्पण का विकास रस गंगाधर कविकर्ण पूर्व का जिन्होंने महाप्रभु के चरणों का अंकुष्ट चूषण करके और इतना दिव्य रसामृत का आस्वादन किया दामोदर और भक्त कहते थे महाराज आपका पैर झूठा कर रहा है बोले पैर झूठा नहीं कर रहा है जाने कौन कौन सा रस चूषण कर रहा है इसके मुख में से जब काव्य कादंबरी निश्चित होकर के परिवर्तिता होगी हजारों संतप्त मरुस्थलीय हृदय परिप्लावित होकर के प्रियंकांक्षा कलम कर्म को प्रकट करने में सक्षम हो जाएंगे। अनुपात के विषय में तो केवल मैं इतना ही निवेदन करता हूँ मुझे थोड़ा सा बहुत थोड़ा सा मतलब निवासी हैं हमारी चतुर्वेदी जी की शोभा पंडित होने में है हम ब्रजवासियों की शोभा तो दमाग होने में हमारा तो दमाग बने उसी आधार से जो थोड़ा बहुत गुरु चरणों में बैठ करके स्वाध्याय सुयोग सुलभ हुआ है तो मुझे थोड़ा सा ज्ञान है अंग्रेजी साहित्य का भी शैले कीस बायरन मैं विद्यार्थी काल में जब मैं पढ़ता था लाहौर में साहित्य विषय में मुझे थोड़ा सा ज्ञान है फिर इधर भी विद्वानों के मुख्य कालिदास भवभूति की मार और फिर अपने युग के भी लेकिन जब थोड़ा भी अवकाश होने पर जब श्री गोस्वामी पाद के श्लोकों का अवलोकन होता है जाने क्यों मन में से ये भक्ति होती है कि रूप गोस्वामी के मुंह से कोई कवि नहीं बोल रहा है, स्वयं रसरूप कृष्ण और राधा कृष्ण स्वरूप श्री गर्गोविंद ही बोल रहे हैं, राष्ट्रीय गौरांग ही बोल रहे हैं। उनके काव्यों में, नाटकों में, उनके काव्यों में, क्योंकि ये तो आलोचना का समय नहीं है, चतुर्वेदी जी को सुनेंगे, मैं थोड़ा स्वस्थ भी नहीं हूँ और फिर एक थोड़ी धाराबंदी की हो रहा है, बीच में भग्न हो गई, लेकिन फिर भी दृष्टि में वाणी से सब कुछ कहा जाए ये संभव नहीं है, लेकिन कोई क्षण होता है जब हृदय में बहुत स्पंदन हो जाता है, तरंगें उठने लगती हैं और अनुभव होता है कि जैसे कोई तैरना न जानने वाला व्यक्ति किसी अगम धारा में प्रविष्ट कर जाए और दूर उतराने लगता है, ऐसे ही जिन्होंने श्रीमद गोस्वामी चरण के दिव्य ग्रंथों का आवेदन किया है, उनके पदों का, काव्यों का, वे ऐसी तरंगों के आवर्त विवर्त में डूब जाते हैं कि उसमें से वही निकल सकता है जिनको कृष्ण चरणारविंद का तट प्राप्त हुआ है। दूसरा उपाय इसलिए केवल रोलिए वैष्णवों के प्राण ही नहीं, संपूर्ण विश्व वैष्णव बांगमय के किसी भी बड़े से बड़े महानुभाव की तुलना उपमा तो नहीं, लेकिन रूप गोस्वामी की कोई तुलना नहीं है, कोई उपमा नहीं है। एक संपूर्ण केवल कवि का दूसरा अर्थ होता है तत्ववर्षी, कवयोप्यत्रवोहिता, बड़े बड़े तत्ववेत्ता लोग भी इस विषय के मोहित हो जाते हैं। श्री रूप गोस्वामी के ऊपर श्रीमन महाप्रभु का ऐसा वरद हस्त था कि बड़ी गंभीर काव्य प्रकाश के श्लोकों को उन्होंने राधा माधव पर इस प्रकार से प्रतिष्ठित किया है कि उन कवि की महिमा का लाघव भी नहीं हुआ है और इनका कवि तो उद्भावित हो गया है। बहुत से लोग अब इस समय उनकी उनका पाठ करें, बहुत समय लग जाएगा, मैं सब चली नहीं हूँ और एक कमजोरी भी है कि एक बार एक धारा तरंगी तो हो बीच में टूट जाती है तो फिर उसमें जोड़ लगाने में बड़ा समय लग जाता है। मैं इन शब्दों के साथ में श्रीमद गोस्वामी के रंग में प्रणाम करता हूँ और थोड़ी सभापति बनाया, यही मेहमाने हैं, यही की बड़ी मेहमान है जो मुझे एक प्रकार का सम्मान प्रदान करते हैं, जबकि महाप्रभु की उपासना में तो घोर गरलम सम्मान से बड़ा गरल कोई नहीं है, लेकिन नौकरी है सभापति होने की भी एक नौकरी है, इधर आम साधन रखा जाए, शांत रखा जाए, उन्होंने जो ये संत समाज में ये सेवा प्रदान की है उससे अपने सौभाग्य की सराहना करता हुआ और उसको स्वामी के चरण में अपना अनंत शांत नमन करता हुआ।
नमो महावल्याम बम्बई के बताए और सब कार्यक्रमों को छोड़कर
हो सकता है Thank you. क्यों किया, कैसे किया, प्रयास लीजिए। उन्होंने अपने खालिदा साहब से उम्मीद वाले के साथ कार्य किया और अपने बच्चों से उनके अंदर नई चीज को की भारत का एक दिन अपनी लड़का में उन्हें बुलाया गई थी, उनके मुख से जोर से किया और स्थान में अपने पीछे परिवार से यहाँ तक नहीं जाना प्रभु का संकट का विचार सब नाम कर रहा है राम जी किया कोई विचार नहीं
समाराधना के इस पर्व पावन अनुष्ठान में यहां श्री रूप गोस्वामी पाद के पावन स्मरण और उनके श्री चरणारविंद में प्रणति वा पुष्पांजलि समर्पित करने के लिए हम लोग सब एकत्र हुए हैं। श्री रूप सनातन मठ श्री महाराज जी के निर्देशन में श्री गौर हरि के जिस प्रेम संदेश और संकेतना को सर्वत्र प्रकाशित कर रहा है वह अपने आप में अत्यंत अत्यंत सुप्त है। श्रीमद् महाप्रभु का जगत को कोई अपूर्व अवदान रहा, उन्होंने सबसे श्रेष्ठ कोई वस्तु पात्र का विचार न करते हुए प्रदान की, पात्र विचार न करते न स्वम परम भीक्षते देया दे विचारो नहीं नवा काल प्रतीक्षा प्रभु सद्यो यश्रवणे क्षण प्रणमन ध्यानादि दुर्लभम दत्ते भक्ति रसम सैव भगवान कौर परम नो गति। भगवान श्री गौर हम भक्तों की तलहत जीवों की एकमात्र गति है। यहां कलयुग परम परम धन्य जहां श्री गौर हरि अवतरित हुए और गौर हरि ही अवतरित नहीं हुए उनके साथ पूरी निकुंज अवतरित हुई। श्रीमद् महाप्रभु के अवतार काल का जो समय रहा वह एक अद्भुत उन महाप्रभु का प्रकट भी जिस समय निज प्रकट है, जिस समय कृपा करते हुए पृथ्वी मंडल पर अवतरित हुआ वो समय भी कोई अद्भुत था। और उस समय वृंदावन रसकों की राजधानी के रूप में तत्वतः विराजमान रहा। उस समय रसकों की पंगत विराजमान थी, काल के प्रभाव से पंगत तो अब उठ गई परंतु जूठन अभी भी शेष है। और यदि हमने उस कृपा को, उस कृपा प्रसाद को, जो प्रसाद अभी शेष है, उस कृपा प्रसाद को यदि सहेजा नहीं तो हम इससे भी वंचित हो जाएंगे। वो समय कोई अद्भुत था। क्या रसपूर्ण स्थिति रही होगी श्रीमद महाप्रभु श्री रूप गोस्वामी श्री सनातन गोस्वामी श्री बल्लभाचार्य श्री हरिदास जी वृंदावन की हरित्रयी हरिराम व्यास श्री हित हरिवंश और जितना भी रस समुदाय, वह सारा रस समुदाय, रसकों का समुदाय उस समय विराजमान रहा होगा। और कहीं उनकी आपस में रस चर्चा रही होगी, वो रसिक मंडली कोई अपूर्व रूप से विराजमान रही होगी। रसकों का जो परवेशन होता होगा, जो पंगत होती होगी रस की, ददात प्रतिगुणाती वही माक्षात पृथ्वति भूंगते भोजे के जीवन षड्विधम प्रीति लक्षण, कुछ देते होंगे कुछ लेते होंगे, कुछ रहस्य की बात कहते होंगे रहस्य की बात पूछते होंगे। वो रस पंगत धीरे धीरे अंतर्धान हुई, अंतर्धान हुई। ठीक है, उस समय सब लोग सुप्त हो गए थे, कहीं सुस्ती बची नहीं थी, प्यास बची नहीं थी। और श्री अद्वैताचार्य को कहीं सज्जा में कहना पड़ा कि अब चावल बिक नहीं रहे हैं। अपनी सज्जा में ये कहना पड़ा कि चावल भरे पड़े पड़े हैं, चावल बिक नहीं रहे हैं, क्योंकि सबको रसपूर्ण कर दिया गया था। श्रीमद् महाप्रभु के अवतार का जो प्रयोजन था, वह अवतार का प्रयोजन उस समय परिपूर्ण रूप से पूर्ण हो रहा था, हो चुका। परंतु काल के प्रभाव से वो पंगत जब उठी, परंतु उस पंगत ने अपना रस प्रसाद कहीं छोड़ा। और धीरे धीरे ऐसी स्थिति भी बनती जा रही कि जो कणका रह गई थी वह कणका भी सहेजने वाले कोई नहीं रहे, और कणका जो थी उस कणका को भी यूं ही भेजा नहीं दिया। जो कणका बची उनको जिन्होंने सहेजा, जिन्होंने उसका संकलन किया, उनने श्री भक्तिवेदांत ठाकुर ने अन्य अन्य रसजनों ने जो उस कणका को सहेजा और उसका जो दान दिया, वह दान भी कोई कम नहीं था, वह भी अपूर्व था। और उसी पद्धति में, उसी परंपरा में श्री महाराज जी हां हमारे पास में विराजमान, हमारे ऊपर कृपा करें। श्री रूप गोस्वामी की जो कृपा साधक समुदाय के ऊपर बरसी वह अद्भुत रही। श्री रूप श्रीमन महाप्रभु ही हैं। महाप्रभु के हृदय को यदि कोई जानने वाला वे श्री रूप गोस्वामी है। और श्री कवि कर्णपुर गोस्वामी बात तो आगे कर रहे हैं कि प्रिय स्वरूप दैत स्वरूप प्रेम स्वरूपे सहजार रूपे नेयान रूपे प्रभु रेख रूपे। तो जब श्री रूप गोस्वामी पाद की तिथि की समाराधना कर रहे हैं, तो रूप गोस्वामी पाद की है तिथि की समाराधना, श्रीमन महाप्रभु की ही समाराधना, क्योंकि श्री चैतन्य मनोभीष्ट यदि किसी ने प्रकाशित किया तो वो श्री रूप गोस्वामी जी ने किया। प्रभु एक रूपे श्री प्रभु से के ही अन्यतम स्वरूप होकर के श्री रूप गोस्वामी पाद विराजमान है। सप्तमी है श्री युगल प्रेम का जो स्वरूप, वह सखी गण ही है, मंजरी गण ही है, और उनके द्वारा ही उस रस का रस की प्राप्ति हो सकती है। यदि कोई राम जी से कहे, श्री रामचंद्र जी से, कि आप कुछ कहिए, रामचंद्र जी वर्ण आश्रम धर्म, धर्म की स्थापना, ज्ञान भक्ति कहते रहे, परंतु अपने बारे में कुछ नहीं कहेंगे, अपना वर्णन स्वयं नहीं करेंगे, प्रजा को धर्म का उपदेश करते रहेंगे, ज्ञान कर्म की बात बताते रहेंगे, मर्यादा का उपदेश करते रहेंगे। श्री जानकी जी से कोई कहे कि आप कुछ बोलिए, श्री जानकी जी श्री राम के रूप, राम की कृपालता, राम के गुणों का ही गायन करेंगे। परंतु यदि श्री हनुमान जी से कोई कहे कि आप कुछ कहिए, तो श्री हनुमान लाल युगल सरकार की महिमा का गायन करेंगे, राम सीता की महिमा का गायन करेंगे, और केवल राम सीता की महिमा का ही गायन नहीं करेंगे, चारों भैयाओं की, चारों मैयाओं की महिमा का गायन करेंगे। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न श्री उर्मिला जी शुभ की सबकी सबकी महिमा का गायन करेंगे, सब मैयाओं का, सब भाइयों का महिमा का गायन करेंगे। परंतु यदि कोई हनुमान जी के किसी सेवक से कहे तो वो हनुमान जी की महिमा का भी गायन करेगा। ऐसी स्थिति में श्री कृष्ण का सीधा सीधा जो दास बन रहा है, उस दास का जो आस्वादन, उस दास के आस्वादन से भी बढ़कर के कहीं जो युगल का अनुगत होकर के विराजमान उसका आस्वादन है, और जो युगल का अनुगत होकर के विराजमान है उन अनुगतों के भी अनुगत दासानुदासों का जो आस्वादन है वह और भी अधिक बड़ा होकर के विराजमान होगा। अतः गौड़ीय वैष्णवों में रूपानुगा सेवा प्रसिद्ध रही, रागानुगा सेवा का एक अभिन्न नाम रहा, रागानुगा सेवा का ही एक परिष्कृत स्वरूप सामने रहा, वह स्वरूप रहा श्री रूपानुगा सेवा। और श्री रूप गोस्वामी जी की तिथि की समाराधना, यह तिथि की समाराधना श्री महाप्रभु और श्री रूप दोनों अभिन्न होकर के विराजमान, और अभिन्न होने के कारण श्री रूप गोस्वामी जी की समाराधना, तिथि की समाराधना, यह श्री महाप्रभु की ही समाराधना है। जयंती उत्सव की अपेक्षा तिथि समाराधन यह कहीं और भी अधिक महत्वपूर्ण है, कम नहीं है, क्योंकि जन्मतिथि और अंतर्धान तिथि, इन दोनों तिथियों की जो समाराधना है, इनमें जो दृष्टि है वो दृष्टि केवल थंगिमा का अंतर है। जयंती में हमको कृपा प्राप्त हो, आप हमको कुछ दीजिए, ये भाव विराजमान है। परंतु अंतर्धान जो तिथि है उसमें आपने हमको कुछ दिया, हम उसके प्रति कृतज्ञ हैं, यह भाव कहीं विराजमान है। बात एक है, कृतज्ञता दोनों में विराजमान है, आनुकूल्य एवं कृष्णानुशीलन दोनों में विराजमान है, परंतु एक में देने की प्रार्थना है, एक में सहेजने की प्रार्थना है। श्री रूप गोस्वामी पाद का यह जो समाराधन, वह उनकी तिथि का समाराधन सबके लिए परम परम हिस्सा है। से रूप का एक अपूर्व योगदान रहा। उस समय भक्त साहित्य बहुत कुछ लिखा जा चुका था, भक्त सिद्धांतों की बहुत कुछ स्थापना हो चुकी थी। श्री रूप गोस्वामी जी ने प्राय नया कुछ नहीं कहा, जो शास्त्र में प्रतिपादित था उसका ही विवेचन कर रहे हैं। पर एक बहुत बड़ी समस्या थी कि शास्त्रों के उस महाअरण्य में उस जंगल में से फूलों को चुनकर के एक गुलदस्ता बना देना, वह एक बहुत बड़ा काम था। इतने ज्यादा सिद्धांत थे, उन सिद्धांतों के बीच में पुंखानुपुंख शास्त्रोद्धार पूर्वक रायण का भक्त मार्ग की स्थापना कर लेना, यह एक बहुत बड़ा योगदान था। और श्री रूप गोस्वामी बाद ने यह जो योगदान किया, वह योगदान ऐसा जिसके कारण श्री रूप गोस्वामी पाद की का प्रतिवादन प्रत्येक ने किया। जो शुद्ध बौद्धिक स्तर पर विराजमान है, केवल एकेडमिक जिनकी बैकग्राउंड है और कुछ भी नहीं जानते हैं, जिनको उपासना से कुछ लेना देना नहीं, ऐसे लोग भी श्री रूप गोस्वामी पाद के कृतित्व को देख करके, उनके योगदान को देख करके उनका प्रतिवादन करते हैं। जो साधक हैं वे भी उनका स्वच्छवाचन करते हैं, जो कवि हैं वे भी उनका स्वच्छवाचन करते हैं। तो संपूर्ण रूप व्यक्तित्व को, श्री रूप गोस्वामी के संपूर्ण अवदान को तीनों दृष्टियों से देखा जाए, विचार की दृष्टि से, जीवन जीने की दृष्टि से और काव्य की दृष्टि से, इन तीनों ही दृष्टियों में जो साधक रहे, तीनों ही क्षेत्रों में जो आगे बढ़ने वाले रहे, उन तीनों ने ही श्री रूप गोस्वामी की जो कृतियां रही, रूप गोस्वामी का जो कर्तृत्व रहा, उस कर्तृत्व का स्वच्छवाचन किया, उन्होंने उनकी प्रशंसा की। अनेक अनेक समस्याएं रही, प्राय दुष्यंत शकुंतला, अभिज्ञान शकुंतल आदि के काव्य ग्रंथ थे, लौकिक काव्य ग्रंथ थे, उन लौकिक काव्य ग्रंथों की ही या रामायण महाभारत को दिव्य बना करके उस समय जो साहित्य लिखा गया, उस साहित्य में का जो समीक्षण किया गया रसशास्त्र की दृष्टि से, काव्य प्रकाश आदि आदि जितने भी सकल ग्रंथ रहे काव्य शास्त्र के, उनमें भी जिस दृष्टि से विवेचन किया गया शास्त्र का और रस का, उसमें रस मन की कहीं एक चित्त की एक वृत्ति थी, वह मूल प्रवृत्तियों के साथ में कहीं जुड़ा हुआ था, इंस्टिंक्ट के साथ में कहीं जुड़ा हुआ था। जो फीलिंग्स थी वे फीलिंग्स कहीं जो इंस्टिंक्ट है उन इंस्टिंक्टों के साथ में जुड़ी हुई है, मूल प्रवृत्तियों के साथ में, कि भाई काम की प्रवृत्ति है, भय की प्रवृत्ति है, बात्सल्य की प्रवृत्ति है, पलायन की प्रवृत्ति है, कुछ प्रवृत्तियां जो थी मनोविज्ञान की, उन प्रवृत्तियों के साथ में कुछ भावनाएं जुड़ी हुई हैं और उन दृष्टियों से ही रस का विवेचन, उन दृष्टियों से ही इन काव्य शास्त्रों में, मम्मट आदि में, काव्य प्रकाश आदि में, साहित्य दर्पण आदि में उस दृष्टि से ही उनका विवेचन किया और रस का सारा विवेचन उन इंस्टिंक्ट पर, उन मूल प्रवृत्तियों के ऊपर कहीं आधारित रहा। भक्ति एक मूल प्रवृत्ति तो नहीं है, मूल प्रवृत्ति होती तो वहां सबको प्राप्त होती, परंतु भक्ति मूल प्रवृत्ति नहीं है, भक्ति तो कृपा के द्वारा प्राप्त होने वाली वस्तु है। जो आखिरी जीव है, जिनके ऊपर श्री प्रभु ने कृपा नहीं की, उनके हृदय में भक्ति का संचार नहीं है, अतः भक्ति काम की प्रवृत्ति की तरह से एक मूल प्रवृत्ति नहीं है, वह कृपा साध्य वस्तु ही है। वह न तो साहिशुद्ध है, स्वाभाविक तो है, निष्प्राप्त तो है। श्री प्रहलाद जी कहते हैं कि कोट प्रयास हो, अरे असुर बालको ऐसा कौन सा अरे प्रयास है, श्री प्रभु तो तुम सबके हृदय में विराजमान हो, जो सबके हृदय में विराजमान है वह जल्दी से ही प्रकट हो जाएगा। सबके हृदय में प्रभु मानो विराजमान है, अंतर्यामी है, प्रभु भले विराजमान हो, परंतु प्रभु की कृपालुता का अनुभव करना, प्रभु की भक्ति का अनुभव करना, यह हर एक के बस की बात नहीं है। प्रभु सबके हृदय में विराजमान है। ज्ञान होना एक अलग चीज है और ज्ञान निष्ठा होना अलग चीज। भक्ति क्या है इस बात का ज्ञान होना यह जीवन को कल्याण करने वाला नहीं है। भक्ति में निष्ठा होना यह जीवन का कल्याण करने वाला है। मैं भक्तों की बात नहीं कह रहा हूं, कुछ देर के लिए ज्ञानियों की बात कही। तो ब्रह्म ऐसा है, सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म आदि, ये जो विवेचन है यह विवेचन किसी को मोक्ष प्रदान करने वाला नहीं है। यह ज्ञान मात्र किसी को मोक्ष प्रदान करने वाला नहीं होता है। ज्ञान में निष्ठा होना, अखंडाकार वृत्ति को प्राप्त करना और एक ज्ञानी के दृष्टि से हम ब्रह्मास्मि आदि जो स्थिति है उस स्थिति को उसे प्राप्त कर लेना, यह जो है यह उसे मोक्ष प्राप्त करने वाली है। तो ज्ञान निष्ठा बड़ी चीज है, ज्ञान की प्राप्ति यह बड़ी चीज नहीं है। ऐसे ही भक्ति के स्वरूप को जान लेना यह बड़ी वस्तु नहीं है। भक्ति में निष्ठा होना यह बड़ी वस्तु है। परमात्मा सबके हृदय में विराजमान है यह ज्ञान बड़ी चीज नहीं है। परमात्मा की कृपा का अनुभव कर लेना यह बड़ी चीज है। ऐसी स्थिति में परमात्मा भले सबके बीच के हृदय में अंतर्यामी रूप में विराजमान है, परंतु भक्ति उसको ही प्राप्त है जिसके ऊपर उसकी कृपा हुई है। अतः यदा यमनुग्रहाति भगवान आत्मभाविता भाविता, जब भगवान जिसको अनुग्रहित करके अपनाते हैं, भवात वर्गो भ्रमतो यदा भवे जन से यदि सुख समागम समागमो यदि तदेव सद्गत परावरेशे स्वयजायते रति। श्री प्रभु संसार में भ्रमण कराते कराते यदि किसी जीव को किसी संत से फिरा देते हैं तो जैसा तन्न होता है वैसा रंग करता है, जैसा रंग करता है वैसी साधना मिलती है, जैसी साधना मिलती है वैसी सिद्धि मिलती है। तो भक्ति में जो निष्ठा की प्राप्ति होना है, भक्त निष्ठा होना, यह